तेच म्हणलं, एक असंच घेतलंय श्रीवल्लभ. बाकी असा आपला एक ग्रुप बनवून आपल्याला कसं पाठ राहील,
टाईप करून ठेवता येईल ना, खालती आहे.
मी तुम्हाला भेटणार नाही कदाचित, पण करू आपण, करू.
हरे कृष्णा. रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है. हर रविवार की तरह सुबह 10:30 से 12:30 इस समय में हम रविवारीय सत्संग कार्यक्रम मनाते हैं. तो आए हुए सभी अतिथियों से हम विनती करते हैं कि प्रवचन में बैठ जाइए. हर रविवार को सुबह 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन होता है, 11 से 12 बजे तक प्रवचन होता है, 12 से 12:30 बजे तक श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होता है, 12:30 बजे सबके लिए महाप्रसाद भी है. तो कृपया सभी जन प्रवचन के लिए बैठ जाइए. आज हमारे साथ प्रवचन देने के लिए उपलब्ध है श्रीमान श्री वल्लभ प्रभु. तो श्री वल्लभ प्रभु का इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है. प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट किया है. उसके पश्चात 4 साल तक उन्होंने सिस्टम डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग इसमें जॉब किया है. और 2009 में उन्होंने श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया. गोवर्धन इको विलेज में आने के पश्चात उन्होंने अनेकों अनोखे सेवाएं की है. उसमें विशेष रूप से वे HR मैनेजर रह चुके हैं और लोकल गांव जो है यहाँ के आजू बाजू के गांव और स्कूल्स वहाँ पे भी वे कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं. अभी वे टेम्पल रिसेप्शन जो कि गोवर्धन इको विलेज का रिसेप्शन है और गेस्ट को टूर देने का जो विभाग है वे संभाल रहे हैं. हमारा परम सौभाग्य है कि वे आज हमें प्रवचन देने के लिए उपलब्ध है. तो हम सभी से विनती करते हैं कि प्रवचन के अंत तक बैठे रहे और प्रवचन का लाभ उठाए. उसके पश्चात कीर्तन होगा और 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद भी होगा. हरे कृष्णा. तो प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के हम स्वागत करते हैं. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल.
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे. लड़को यहां पर आ जाओ, वो लेडीज का एरिया है, आप यहां पर आइए. आप भी ऐसे आ जाइए, सब लोग आप ऐसे आ जाइए, बैठिए. अभी 1 घंटे तक हम लोग भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न लीलाओं पर कथा श्रवण करेंगे. 1 घंटे के बाद फिर भगवान का दोपहर का महाआरती होगा, तो उसका भी आप भाग ले सकते हैं. तो आप सब आप यहाँ पर आए हैं तो कृपया करके अनुरोध है कि आप यहाँ पर आकर प्रवचन के लिए बैठिए. अभी हम कीर्तन शुरू करेंगे. जैसे मैं कहता हूं मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा. सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए. आंखें बंद करके भगवान के नाम का पूरी तरह से ध्यान पूर्वक उच्चारण कीजिएगा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो कृष्णा सब बोलिए हरे जोर से बोलिए राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्णा, सब बोलो हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा, सब बोलिए जोर से, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री हरि नाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे साप्ताहिक रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में। आप सबसे अनुरोध है जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं कृपया करके बैठ जाइए। अगर दर्शन हो गया होगा फोटो सेल्फी निकाल कर हो गया होगा तो बैठ जाइए प्लीज। देखना घूमना फिरना अगर हो गया होगा तो थोड़ा देर हम भगवान की कथा सुन लेंगे। आप सबसे अनुरोध है कृपया करके यहाँ पर आके बैठ जाइए। अगर आपके साथ कोई छोटे बच्चे है तो उनको लेकर आप नीचे चले जाइए ताकि यहाँ पर अन्य कोई उससे परेशान न हो। तो आज आप यहां पर सब उपस्थित हुए हैं। आपने सोचा होगा कि ये जो जगह है कई लोगों से आपने जगह के बारे में सुना होगा कि बहुत ही सुंदर जगह है। शायद आप में से कई लोग यहां पर पहले भी आ चुके होंगे और जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये जो जगह है ये एक तीर्थ एक पर्यटन स्थल नहीं है। ये एक पर्यटन स्थल नहीं है ये एक तीर्थ स्थल है। कई लोग पिकनिक मनाने के हिसाब से जब वो धाम में जाते हैं तो उनको निराशा ही होती है क्योंकि धाम में पिकनिक करने से कुछ होता नहीं है। तो यहां पर आप आए हैं तो यहां पर आपको भगवान का मंदिर दिखेगा और हमारा एक सुंदर सा वृंदावन फॉरेस्ट जो हमने बनाया है उसका आपको परिक्रमा या दर्शन होंगे। तो एक प्रकार का ये एक प्रतिव्रज भूमि बनाई है हमने। प्रति मतलब डुप्लीकेट या रिप्लिका इसे हम कह सकते हैं। कई लोग होते हैं जो मूल वृंदावन नहीं जा सकते। किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है किसी का शारीरिक तकलीफ होती है जिसके कारण में मुख्य वृंदावन नहीं जा सकते तो वही लाभ वृंदावन जाने का वही लाभ उन्हें यहां पर भी प्राप्त हो सकता है क्योंकि यहां पर भी एक वृंदावन का छोटा सा रूप हमने तैयार किया है। तभी हम यहां पर आए हैं धाम दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर हम धाम दर्शन में अगर दर्शन आंखों से करने जाएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि ऐसा कहते हैं जैसे आप में से कई लोग अभी फोटो सेल्फी निकालने में बिजी है कुछ लोग यहां पर तो भगवान को कम और अपने आप को ज्यादा देखा जाता है उसमें है ना। तो कभी कभी भगवान को भी देख लेना चाहिए। तो कुछ लोग आते हैं तो हमें प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी मंदिर में कौन कौन लोग हैं आपके। क्या आपके भी मन में ऐसे प्रश्न आते हैं? एक जगह पे भगवान कृष्ण तो दिखते हैं समझ में आते हैं, बाजू में श्रीमती राधा रानी है वो भी समझ में आ जाती है, लेकिन अन्य एक और व्यक्ति है वो कौन है, वो लड़की है या लड़का है वो भी कंफ्यूजन लगता है कभी कभी। तो कुछ ही लोग होते हैं जिनके मन में प्रश्न आता है, लेकिन बाकी के सब लोग फोटो सेल्फी निकालने के चक्कर में ध्यान ही नहीं देते। लेकिन मंदिर में जाने का उद्देश्य जो होता है, केवल मंदिर में जाके कान पकड़ना, गाल पे ऐसे ऐसे हाथ मारना है ना, कुछ लोग करते ऐसे, और भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलना है भगवान एग्जाम नजदीक आ रही है पास कर दो, तो ये मंदिर जाने का उद्देश्य नहीं हो सकता। मंदिर जाने का उद्देश्य जो है वो भगवान के द्वारा प्राप्त की गई जो दिव्य शिक्षाएं हैं उनको सुनने जाना। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन है मंदिर में, कौन उपस्थित है, विद्यमान है, तब तक आप देखकर भी उन्हें देख नहीं पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कुछ लोग हैं वहां पर मंदिर के मंदिर के वेदी पर 3 विग्रह रखे हैं, लेकिन कुछ लोग को पता ही नहीं होता, तो देखकर भी नहीं देख रहे। तो वास्तविक तौर पे जो देखना है, दर्शन करना है, वो आंखों से नहीं होता है, कानों से होता है। और इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि भाई आपका फोटो सेल्फी निकाल कर हो गया तो आकर बैठ जाइए, तो कानों से देखिए। आंखों से तो हम देखते ही नहीं है कुछ भी, आंखों से तो हम केवल सुंदर नक्काशी, सुंदर किस प्रकार से सुंदर मूर्ति बनाई है उतना ही हम देख पा रहे हैं, लेकिन कानों से सुनना होता है। तो तीसरे विग्रह जो है वो है चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण के इस कलयुग में 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल प्रांत में मायापुर इस जगह पर उनका प्राकट्य हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, और उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की थी। जहां कहीं पर भी आप भगवान का कीर्तन होते हुए देखते हैं, जोरदार कीर्तन हो रहा है, भगवान का जोर से कीर्तन किया जा रहा है, इस कीर्तन आंदोलन की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले शुरू की थी, और फिर ये पूरे भारत भर में फैल गई। तो वे चैतन्य महाप्रभु हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। अभी इनके बारे में बताना जाए तो पूरा क्लास कम पड़ जाएगा, लेकिन आज का वो विषय नहीं है हमारा। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो अलग विषय पर चर्चा है, और वो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा कैसे होती है, या भगवत कृपा कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको बताने आऊंगा कि ये जो दिवाली का हम महीना ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसे कार्तिक महीना भी कहते हैं, इसका एक और नाम है दामोदर महीना। आपने कार्तिक महीना सुना है, कार्तिक शब्द? महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं उनको कार्तिक महीने का महत्व पता है, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग कार्तिक महीने में पंढरपुर की वारी करते हैं, और साल भर कुछ व्रत करे या ना करे, आषाढ़ी कार्तिक का व्रत करते ही करते हैं। मतलब महाराष्ट्र में ये एक हर घर की परंपरा है, आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी, ये पूरे महाराष्ट्र की परंपरा है। आजकल सब लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के जमाने में सब भूलते जा रहे, लेकिन पुराने जमाने के लोगों के लिए मालूम होगा। तो ये आषाढ़ी और कार्तिकी क्या होती है, और ये कार्तिक महीना जो है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो आषाढ़ महीने में भगवान या देवगण जो है वो सो जाते हैं, इसलिए उसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, मतलब उस दिन भगवान सो जाते हैं। और कार्तिक महीने में उसे कहते हैं उत्थान एकादशी, मतलब उस समय पर देव उठते हैं, जागृत होते हैं। तो आप बोले कि बाप रे, भगवान भी सोते हैं, हमें लगा हमको ही नींद आती है, लेकिन भगवान को भी सोना पड़ता है। तो ये इसकी तुलना हमारे मंदिर से की जाती है, हमें इस सब की तुलना हमारे मंदिर से की जाती है। ये जो 4 महीने हैं, आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक के जो 4 महीने हैं, 4 महीने तक भगवान सोते हैं, और कार्तिक महीने में भगवान उठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है चार महीने तक भगवान का सोने का इश्यू क्या है, वो ये है कि जैसे पृथ्वी पर हम मंदिर खोलते हैं और मंदिर बंद करते हैं, है ना, सुबह सुबह मंदिर खोलते हैं जिसे हम महाराष्ट्र में काकड़ आरती कहते हैं, यहाँ पर इस्कॉन में मंगल आरती कहते हैं, तो सुबह सुबह जल्दी हम खोल देते हैं मंदिर, भगवान दर्शन देते हैं पहला, और शाम को मतलब रात के समय 8-9 बजे के आसपास मंदिर को वापस बंद कर देते ताकि भगवान को सुलाया जा सके। तो इसे विग्रह उपासना का एक नियम कहते हैं, विग्रह आराधना में इसे नियम कहते हैं, भगवान को सुलाना, भगवान को उठाना। तो सेम नियम स्वर्गलोक में भी होता है, सेम नियम स्वर्गलोक का भी है। स्वर्गलोक में भी मंदिर है जहां पर इंद्रदेव भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं, तो वहां पर भी मंदिर है, और हम जो कुछ फॉलो करते हैं यहां पर वो उसी का ही रिफ्लेक्शन है। आषाढ़ी के समय पर भगवान स्वर्गलोक में भगवान को सुलाया जाता है, मतलब उस समय पे वहां का मंदिर का दरवाजे बंद हो जाते हैं, इस वजह से भक्तों को उनके दर्शन नहीं हो पाते। और सुबह सुबह कार्तिक के समय पर दर्शन खुलते हैं, कहां पर, स्वर्ग में, और तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो हम ऊपर का सिस्टम जो स्वर्ग का सिस्टम है वही यहां पर फॉलो कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर एक साल जब गुजरता है तब स्वर्गलोक में 24 घंटे गुजरते हैं, मतलब वहां का एक दिन मतलब पृथ्वी का एक साल होता है। तो जैसे हम यहां पर भी मंदिर में भगवान को सुलाते हैं तो 8 घंटे सुलाते हैं, शाम को 8 बजे मंदिर बंद करते हैं तो सुबह 4 बजे खोलते हैं, 8 घंटे भगवान को रेस्टिंग टाइम देते हैं। उसी प्रकार से स्वर्गलोक में भी वहां पे भी 8 घंटे का टाइम है। कभी कभी आपने सोचा है कि मंदिर में हम इसी समय पर दर्शन क्यों खोलते हैं, इसी समय पर मंदिर क्यों बंद करते हैं, इसी प्रकार से आरती क्यों करते हैं? तो ये जो सारा सिस्टम है ये सिस्टम पृथ्वी का नहीं है, ये सारा सिस्टम ऊपरी लोकों का है, और वही सिस्टम हम यहां पर भी फॉलो करते हैं। तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, हाथ में कुछ मोर पंखा लिए है, घुमा रहे हैं, कुछ वो गुच्छे जैसा बालों जैसा बड़ा सा चीज लेके भगवान के सामने कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं, क्या जरूरत है सब करने की? तो वास्तविक तौर पर हम ये सारी जो प्रक्रिया है ये सब उच्चतर लोकों की है जो हम यहां पे फॉलो करते हैं। तो ये जो 8 महीने है, सॉरी ये जो 4 महीने है, यहां के 4 महीने मतलब स्वर्ग लोग के 8 घंटे, वहां के कितने, 8 घंटे। तो इसलिए यहां पे चातुर्मास का सिस्टम है। चातुर्मास क्या होता है, यहां पे चातुर्मास में बारिश होती है, लेकिन वास्तविक तौर पे चातुर्मास का मुख्य विषय क्या है कि इन चातुर्मास में अधिक से अधिक भगवान का स्मरण किया जाता है, अधिक से अधिक शुभ कार्य किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि भक्त जो है भगवान के दर्शन के विरह में इतना दुखी रहता है कि वो भगवान के भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करना चाहता, वो एक जगह पर बैठकर केवल भगवान की आराधना उनकी सेवा ही करना चाहता है, इसलिए वो कहीं नहीं जाता। एक जगह पर बैठकर व्रत करेगा, तपस्या करेगा, अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य करता है वो, क्योंकि उस समय पर भगवान अपना दर्शन बंद करके रखते हैं। वास्तविक तौर पे जो भक्त होता है वो भगवान से दूरी नहीं सहन कर सकता, तो जब भगवान के दर्शन बंद होते हैं तो वो सोता नहीं है, उसे चलो अभी भगवान सो रहे तो चलो मैं भी सो जाता हूं, उसे दुख होता है कि अरे मुझे भगवान के दर्शन वापस कब होंगे। और यही हमारे पंढरपुर के वारी का भी एक भाव है। पंढरपुर के वारी में भी जब आषाढ़ी में पंढरपुर की वारी करने के जाने वाले जो वारकरी है जब वो जाते हैं तो वो भगवान का उस दिन का आखिरी दर्शन करने के लिए जाते हैं, इन द सेंस कि अभी भगवान सोने जा रहे हैं तो भगवान को हम दर्शन करके हम हमारा एक ग्रैटिट्यूड या फिर एक कृतज्ञता अर्पण करेंगे। और फिर से 4 महीने के बाद जब कार्तिकेय आते हैं तो जैसे आप सबको पता है कि जब दिन का पहला दर्शन होता है तो कितना उत्साह रहता है, तो उस उत्साह के साथ कार्तिक महीने में वापस वारकरीगण पंढरपुर जाते हैं और कार्तिक उत्थान एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का सुंदर श्रृंगार और दर्शन करते हैं। तो ये उसके पीछे का भाव होता है। तो ये सब क्यों करते हैं, भक्तों को ये सब करने की क्या आवश्यकता है? कल्पना कीजिए, आप किसी से प्रेम करते हैं या आपसे कोई प्रेम करता है। यदि आपसे कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति आपके सोने के बाद सोए, आपसे आपके उठने के पहले उठ जाए और आपके हर प्रिय वस्तु वो पहले कर दे बिना आपके कहे, तो क्या उसे सच्चा प्रेम नहीं कहेंगे? है ना, हम क्या करते हैं, खुद खा लेते हैं बाद में बच्चों को खिलाते हैं, ऐसा करते हैं क्या हम लोग? पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। बाप रे, शायद घोर कलयुग आ रहा है, पहले खुद खा लेते हैं बाद में बच्चों को खिलाते हैं। अच्छा, लेकिन वास्तविक जो शुद्ध प्रेम होता है, प्रेम में क्या होता है कि माता पिता खुद भूखे रहेंगे लेकिन बच्चों को खिलाएंगे, ये बात मानते हैं आप? ये बात सच है कि धीरे धीरे कम होते जा रहा है? माता पिता बोलते जब आएगा तब आएगा, पहले मैं खा लेता हूं, भूख लग रही है मुझे। लेकिन वास्तविक जो प्रेम होता है वहां पर यही होता है कि सबसे पहले अपने प्रिय व्यक्ति को प्रसन्न किया जाए, उसे जो पसंद है। अभी जब किसी का बर्थडे होता है तब भी हम क्या करते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है, चलो मैं उसे वो जाके दूंगा। तो जिसको जो प्रिय व्यक्ति है उसे जो पसंद है, उसे जिसमें आनंद आता है, वो सब करते हैं। तो भगवान और भक्त में भी यही संबंध है, भक्त भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं और भगवान को जो अत्यंत प्रिय है वो भगवान को अर्पण करते हैं। और इससे क्या होता है, जो प्रियकर है वो प्रियकर और अधिक प्रेम अर्पण करता है, है ना? तो ये प्रेम का आदान प्रदान है। तो जब भक्त भगवान के प्रति प्रेम अर्पण करता है तो भगवान भी इन रिटर्न भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। और यही कार्तिक महीना का विशिष्टता है। ये विशेषता क्या है, हर कोई व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान के उठने की राह देखता है। और ये कार्तिक महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्यों है? उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इस दिन या इस महीने में भगवान के सारे भक्त भगवान की आतुरता से दर्शन की अभिलाषा लेके बैठे हैं और उनका दर्शन करना चाहते हैं। और भगवान भी टाइम देखते, घड़ी देखते रहते, कब मंगल आरती के लिए दरवाजा खुलेगा। और जैसे ही दरवाजा खुलेगा, भक्त भी भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान भी भक्तों का दर्शन कर पाते हैं। तो ये बहुत सुंदर आदान प्रदान होता है भक्त और भगवान के बीच में। इसी कार्तिक महीने में ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि भगवान को ये मंथ, ये महीना अत्यंत प्रिय है, तो जो कोई भी व्यक्ति इस महीने में आध्यात्मिक कार्य करता है उसका फल 100 गुना उसे प्राप्त होता है। मतलब यदि आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हो तो उसका कितना फायदा होगा, 100 गुना फायदा होगा। तो क्या विचार है, ज्यादा करना है ना? साल भर नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, ये महीने कर लो, इसी महीने में साल भर का कोटा कंप्लीट कर लो। जो व्यक्ति इस महीने में तीर्थ यात्रा करता है, खासतौर पर भगवान के तीर्थस्थल जैसे वृंदावन है, अयोध्या है, इत्यादि तीर्थस्थल है, जो कोई व्यक्ति इन तीर्थस्थलों में प्रवेश करता है उसके सारे पाप नष्ट होते, हर एक पग पर पग मतलब एक एक वॉकिंग स्टेप के ऊपर उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के नजदीक और बढ़ते जाता है। इस महीने में जो कोई भी भगवान को दीप अर्पण करता है, इस महीने में आप देखे होंगे इस्कॉन के मंदिरों में हर शाम को दीप अर्पण का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस महीने में कार्तिक महीने में भगवान को दीप अर्पण करेगा, जितने पाप उसने अपने जीवन भर में नहीं किए होंगे, केवल एक दीप अर्पण करने सारे पाप भस्म हो जाते हैं। मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है पाप करने की, उससे कई ज्यादा पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम पाप करते जाएंगे और एक दिन आके दीप घुमाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसका आशय ये है कि ये जो कार्य है भगवान को अत्यंत प्रिय है, और भगवान जब देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास आया है मुझे प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, मतलब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पाप का क्या चक्र है अगर हम थोड़ा सा समझेंगे, ये ऐसा है मानो किसी ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, क्राइम किया है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर वो क्या कहता है, राष्ट्रपति के पास अर्जी डालता है, मर्सी प्ली। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा उसने क्राइम क्यों ना किया हो, यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है, उसका कोई भी दंड उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास अधिकार है राष्ट्रपति के पास। उसी प्रकार से इस जगत में जो कोई भी व्यक्ति पाप कार्य करता है, भगवान के पास पूरा अधिकार है, वो चाहे तो उसे क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे भगवान को क्षमा, जब भगवान देखेंगे कि ये व्यक्ति हृदय से मुझे प्रसन्न करने के लिए आया है और अपने पापों के लिए पछतावा कर रहा है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को सारे पापों से क्षमा कर देते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है समझना। ये सारे पाप पुण्य इत्यादि जो चीजें है सब भगवान की कृपा पर निर्भर है। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो हम इन सब चक्रों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग भक्ति क्यों करते हैं, भक्ति करने का मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाला हूं, जो कथा कार्तिक महीने में घटित हुई थी। आप कथा सुनना चाहते हैं? शायद आपने कई बार सुनी भी होगी, लेकिन इस महीने में यह कथा को बार बार सुनने से बहुत आनंद आता है। तो ये कथा है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण एक चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कोई बता सकता है कौन सी चीज है जिसके लिए भगवान कृष्ण को प्रसिद्धि मिली है? माखन चोरी के लिए। देखो वो वहां पे स्टैचू है वहां पर कृष्ण का, माखन चोरी के लिए कृष्ण को दंड मिल रहा है। इस जगत पे चोर बनना किसी को भी पसंद नहीं, लेकिन एक फिल्म आई थी जिसपे हीरो के हाथ पे लिखा गया था मेरा बाप चोर है, लेकिन हम भक्त होने के नाते हम गर्व से कहते मेरा बाप भी चोर है, लेकिन वो माखन चोर है। तो देखो, चोर होना एक प्रकार के अपमानस्पद बाप है, मतलब लक्षण है, लेकिन कृष्ण को चोर के नाम से वो विख्यात है। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, वो सभी चोरों के भी चोर है ऐसा कहा जाता है। तो क्या चोरी करते हैं वो? भगवान जिसका हृदय मक्खन जैसा कोमल है, शुद्ध है, भगवान ऐसे भक्तों का हृदय चोरी कर लेते हैं, तो इसलिए वे बहुत प्रसिद्ध है। तो आज मैं इसी माखन चोर की कुछ कहानी आपको बताऊंगा, शायद आपको पसंद आए। भगवान श्री कृष्ण ने चोरी करने का धंधा बहुत छोटेपन में ही चालू कर दिया था। अभी कोई पूछेगा कि अरे कृष्ण को चोरी करने की क्या आवश्यकता है, कृष्ण तो स्वयं मालिक है, सब चीजों के स्वामी है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं कि चोरी करके खाने में जो मजा है वो पैसा लेकर खाने में मजा नहीं है। क्या ये बात स्वीकार करते हो? अभी देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ है, अगर कोई नोटिस किया होगा तो पता नहीं, बहुत सारे आम के पेड़ है और हम जब चाहे ले भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बाजू वाले के आंगन में जाके चोरी करके खाते हैं, वो अलग ही मजा होता है। दूसरा ये है, खासतौर पर जब मैं कॉलेज में रहा करता था तो मेरे दोस्तों के साथ हमारे पास भी पॉकेट मनी हुआ करता था, लेकिन जब दोस्त के प्लेट में हाथ डाल के खाने में जो मजा है वह अपने प्लेट से खाने में मजा नहीं होती थी। हमारे दोस्त लोग कहते थे फोकट का खाने में जो मजा है ना, पैसा देके खाने में मजा नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि ये बात सच है कि हमारे पास सब कुछ है, सुविधा है, सब फैसिलिटी है, लेकिन कुछ अलग ही रस है जब आप किसी को परेशान करके किसी को तकलीफ दे, तकलीफ नहीं मतलब एक प्रकार से एक अलग नाते से आप उससे वो छीन कर खा रहे हो, तो अफकोर्स वो छीन, जिससे हम छीनते हैं वो भी प्रसन्न होता है, ऐसा नहीं कि वो परेशान हो जाए तो उसे छीनना गलत बात कहेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान जो करते हैं वो अलग बात है। जैसे हम हमारे दोस्तों के साथ है ना, कभी दोस्त आता है जोर से कंधे पे हाथ मारेंगे, फटाक से मार देंगे, और कैसे चल रहा है, सब ठीक है, तो आप बोलेंगे बाप रे इतना जोर से पीठ पे मार दिया इसके और फिर भी खुश है, दोनों हंस रहे हैं, तो अलग संबंध है। लेकिन वही चीज आप किसी और के साथ करो तो दो फटके आपको पड़ जाएंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप में आदान प्रदान जो होता है ना वो ज्यादा आनंद देता है, समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी माखन चोरी करके खाते थे, जबकि कृष्ण के घर में कृष्ण स्वयं नंद बाबा के पुत्र है, नंद महाराज है, सारे ग्वाल बालों के, ग्वाल गोप बालों के वो राजा है, तो उनके पास कितना रहेगा। लेकिन फिर भी अपने घर पे वो कम चोरी करते, घर का खाते नहीं थे, बाहर ही जाके चोरी करते थे, क्योंकि उसमें एक अलग आनंद था। तो ये शुरुआत होती है एक बार से, जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे से बालक थे और वो केवल घुटनों के बल पर चल सकते थे। कोई माता बता सकती है कि बच्चे घुटनों के बल पर कब तक, कौन सी उम्र में चलते हैं? कोई भी माता है? 8-9 महीने, चलो 1 साल पकड़ लेते, टू बी ऑन द सेफर साइड। तो भगवान श्री कृष्ण भी 9 या 12 महीने के थे, तब की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक के रूप में माता यशोदा अपने किचन में खाना पका रही थी, सब कुछ चल रहे, इधर यहाँ पे कृष्ण बेचारे परेशान हो गए, मम्मी आ नहीं रही है, मुझे भूख लग रही है, अभी क्या करूं। तो कृष्ण अपने घुटनों के बल चलते चलते ढूंढने लगे यशोदा माता को, और ढूंढते ढूंढते वे गोडाउन में जा पहुंचे। गोडाउन में वहां पर सारा मटके भरे हुए थे, घी के, दही के, मक्खन के, सारे दूध से बने हुए जो पदार्थ थे उसके सारे मटके पड़े हुए थे, और ये लोग व्यापार करते थे तो स्टोरेज करके रखा करते थे, तो हर एक घर में गोडाउन हुआ करता था। तो कृष्ण ने देखा यहाँ पे मक्खन का सुगंध आ रहा है, तो तुरंत घुस गए और चुपचाप 2-3 खा लिए। तो उसे लगा अरे अच्छा आइडिया है, भूख लगी तो घुस जाओ। तो बलराम जी को यह बात पता चली कि कृष्ण छुप छुप के गोडाउन में जाता है और चोरी चोरी करके मक्खन खाता है। तो बलराम जी ने माता यशोदा को बोल दिया, मैया कृष्णा चोरी करके मक्खन खाता है। तो यशोदा को थोड़ा डर लग गया, क्योंकि मक्खन जो होता है थोड़ा हजम करने में तकलीफ देता है ना। छोटा बच्चा अगर रबड़ी खा ले तो माँ को टेंशन हो जाती है, जबकि रबड़ी शरीर के लिए पौष्टिक होती है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए तकलीफदायक हो सकती है। तो माता यशोदा को चिंता हो गई, अरे बच्चा कितना खा रहा है। तो एक बार माता यशोदा चुप चुप के देखने आई कि कृष्ण करता क्या है। तो एक दिन ऐसे ही कृष्ण चुपके चुपके गोडाउन में घुस जाता है। अभी कृष्ण को भी पता है मैं चोरी करके खा रहा हूं, तो जिसके मन में चोर होता है वो हमेशा सतर्क रहता है, इधर उधर देखता है कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा, और चुपके से घुस जाता है। और यशोदा माता खिड़की के एक क्रैक से देख रही थी सब कुछ क्या करता है कृष्ण। तो जैसे ही कृष्ण गोडाउन में प्रवेश करता है, वो अपना हाथ मटके में डालता है और मक्खन निकालता है, मुंह पे लगाते खाने लगता है। इतने में उसका ध्यान जाता है बाजू के दीवार पर जहां पे उसका रिफ्लेक्शन था। उस रिफ्लेक्शन को देख के लगता है अरे कोई और बंदा आ गया वहां पे, वो डर जाता है, उसे लगता है कोई एक लड़का आ गया, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। तो कृष्ण कहता है हे चुपचाप बैठो, मैं ये मक्खन तुम्हें भी देता हूं, तुम भी खाओ और मैं भी खाता हूं, चुपचाप बैठ के दोनों चोरी करेंगे, मैया यशोदा को मत बताना। और वो मक्खन उसको खिलाता है। माता यशोदा ये देख के इतनी हंसने लगती है, उसे लगने लगता है कि मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है। देखो माँ को कब आनंद आता है, जब बच्चा बड़ा होता है। उसका लक्षण क्या है? जब बच्चा बड़ा होता है तो होशियार बनता है, और होशियार का एक लक्षण क्या है कि वो किसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को प्रलोभित करे, मतलब अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों को भी अपनी गलती में मिला ले। ये दर्शाता है कि उसके अंदर बुद्धि क्षमता बढ़ गई है। तो यशोदा का बहुत आनंद हो गया कि मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और तुरंत वो अंदर जाती है, कृष्ण को बोलती, कृष्ण मैंने तेरी चोरी पकड़ ली। कृष्ण बोलता, मैंने चोरी नहीं की, ये जो लड़का है ना, वो रिफ्लेक्शन को बता रहा, ये जो लड़का है ना, ये लड़का चोरी कर रहा था, मैंने कहा ये मेरे घर का मक्खन है, मैया यशोदा को कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी, चोरी मत करो, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा था, उल्टा वो मुझे मक्खन देके मुझे रिश्वत दे रहा था। ये सुन के यशोदा माता को बहुत हंसी आती है। तो ऐसे कृष्ण का पहला कारनामा जो पहले पकड़ा गया। दूसरी बार एक वापस कृष्ण चोरी करने के बहाने वापस गोडाउन में घुस जाते हैं। अभी यशोदा माता वो भी चुप चुप के जाती उसके पीछे, क्या करते देखते, इस बार क्या बहाना बनाता है। तो जब कृष्ण ने अपने गोडाउन में रखे हुए मटके में हाथ डाला, तुरंत यशोदा माता ने पीछे से बोल दिया, कृष्णा क्या कर रहे हो। कृष्ण डर गया, उसके हाथ में मक्खन का जो बोलते ना पूरा लगा हुआ था मक्खन बाहर आ गया। तो कृष्ण बोला, कुछ नहीं कर रहा हूं मैया, मैंने देखा तुम चोरी कर रहे थे, तुम्हारा हाथ, तुमने मटके में हाथ क्यों डाला। कृष्ण ने कहा, मैंने मटके में हाथ इसलिए डाला क्योंकि मेरा हाथ जल रहा था। तो यशोदा माता को आश्चर्य लगा, रहे जल रहा था, कैसे जल रहा था। तो उसने कहा, आप ही के कारण जल रहा था, आपने मुझे ये सुंदर सुंदर जो ब्रेसलेट हाथ में लगा है ना, उस ब्रेसलेट पे सूरज की किरणें गिरती है, तो सूरज की किरणें गर्म होती है और उस ब्रेसलेट भी गर्म हो जाता है, और वो गर्म होने के कारण मेरे हाथ को चटका लगता है, ये मक्खन जो है बहुत ठंडा है, इसलिए मैंने मक्खन के इसमें हाथ डाल के रखा ताकि मेरा जलन कम हो जाए। अच्छा बहाना है ना, कोई इतना बड़ा स्कैम कर सकता है क्या। तो इसलिए कृष्ण हमारे भगवान है ना। तो ये सुन के माता यशोदा को बहुत आनंद आया। एक बार की और एक बात है, अब कृष्ण थोड़े बड़े हो चुके थे, अभी वो खिलौनों के साथ खेलते थे, अभी वो भाग चल सकते थे, दौड़ सकते थे। तो माता यशोदा एक बार उस फिर से वो एक जगह पर देखे कि वो मक्खन चोरी कर रहे हैं। इस बार यशोदा माता ने देखा, इस बार क्या बहाना बनाते देखते हैं। तो जैसे ही कृष्ण ने उस मक्खन की मटकी में हाथ डाला, तुरंत यशोदा माता ने कहा, कृष्ण मैं सब देख रही हूं, वापस तुम चोरी कर रहे हो। तो कृष्ण ने कहा, मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, मेरा बछड़ा यहां कहीं आ गया था, मैं बछड़े को घास चरा रहा था, ये बछड़ा ही यहां पर घुस गया। तो यशोदा माता बोलती, बछड़ा, अभी तक तुमको कोई बछड़ा नहीं दिया चराने के लिए। कृष्ण कहते, हां मेरे पास बछड़ा भी है जिसको मैं चरवाता हूं। तो माता यशोदा ने कहा, अच्छा तो बछड़ा कहां है बताओ। वो बछड़ा यही किसी इसी गोडाउन में घुसा था, मैं उसको ढूंढ रहा था। तो अगर बछड़ा घुमा है तो मटकी में हाथ क्यों है तुम्हारा। तो वो बोलता है कि मटकी में तो घुसा है वो बछड़ा। तो अच्छा मटकी में कैसे। तो फिर वो मटके में हाथ निकाल के हाथ बाहर निकालता है, उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना होता है जो बछड़े का होता है। देखो मेरा बछड़ा इस मटकी में चला गया था, शायद उसको भी मक्खन पसंद है, तो मैं अपने बछड़े को लेने आया था, मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो ये कृष्ण के अलग अलग बहाने किस्से। लेकिन अभी बच्चे जैसे बड़े 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 होते हैं, चलने लगते हैं, तो माता को बहुत टेंशन होती है। जब बच्चे जब पीठ पे सोते हैं तब तक ठीक रहते हैं, माता को ज्यादा टेंशन रहती है, लेकिन जैसे ही बच्चे रेंगने लगते हैं टेंशन बढ़ जाता है। सोचो बहुत बदमाश जब बच्चा हो, जब वो चलने लग जाए तो माँ को कितना टेंशन होता होगा। सेम प्रॉब्लम यशोदा माता के साथ था। अभी कृष्ण भगवान चलने लग गए थे, भाग रहे थे, तो अभी वो अपने घर के आंगन को पार करने की फिराक में थे। जैसे ही माता यशोदा का ध्यान हटा, ये फरार, घर के बाहर फरार हो जाते थे, और मैया यशोदा को जाके पकड़ के वापस लाना पड़ता था। तो ऐसे ही उस समय तक भगवान कृष्ण के और भी बहुत सारे मित्र बन चुके थे, जो कृष्ण की ही तरह चांडाल चौकड़ी थी, मतलब उन्हीं की तरह मस्तीखोर थी, और सारे के सारे वृंदावन ब्रजवासी सारे जो थे वो उनको अलग अलग प्रकार से उल्हाने दिया करते थे। तो एक बार की बात है, एक बार सभी बच्चों ने सोचा कि चलो जाके हम दूसरों के घर में चोरी करते, अभी तक तो अपने घर में चोरी की, अपने घर में चोरी करके मजा नहीं आ रहा, अभी अभी दूसरों के घर पे जाके चोरी करेंगे। तो अभी कृष्ण क्या करते हैं, चुपचाप जाकर दूसरे के घर में चोरी करने लगते हैं। शुरू शुरू में तो गोपियों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन चोरी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे पता चल गया कि कृष्ण और उनकी जो सारी वानर सेना है वो सब आ जाती है। फिर सारी गोपियों ने एक बार प्लान किया, गोपियों ने प्लान किया कि आज कृष्ण को हम पकड़ लेंगे। जैसे ही पता चलेगा कि कृष्ण ने एंट्री की है चोरी करने के लिए, हम उसको तुरंत पकड़ लेंगे और पकड़कर यशोदा माता के पास ले जाएंगे दंड करने के लिए। लेकिन अन्य गोपियों ने कहा कि कृष्ण तो एक्सपर्ट है, वो किसी के भी हाथ में नहीं आता, बहुत तेज दौड़ता है, तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे। तो सबने कहा तुम चिंता मत करो, इस बार हम लोग मक्खन की मटकी जो है वो सीलिंग पे रखेंगे, मतलब क्या होते घर की छत है ना, उस पर लटका के उसे क्या कहते हैं, वो जिस पे मटकी रखते हैं सर पे सीलिंग पे लगा के, मराठी में शिंका कहते उसे, शिंका वॉट एवर जो भी है आपको पता है, तो उस पे लटका के रखते हैं। तो एक बार कृष्ण अपने मित्रों के साथ ऐसे एक गोपी के घर पे चले गए और उन्होंने देखा कि सारी मटकियां जो है ऊपर लटका के रखी है, और गोपियों ने भी जानबूझकर ऐसा कमरा चुना जहां से बाहर निकलने का और अंदर जाने का एक ही रास्ता हो, तो एक ही रास्ता वाला रूम चुना, उसे में रख दिया। और जैसे ही सारे बच्चे अंदर घुस गए, गोपियां तो छुप छुप के देख रही थी, तो एक गोपी ने तुरंत आकर बाहर से कड़ी लगा दी, अभी बच्चे के सारे बच्चे अंदर फंस गए। और ये गोपी ने क्या किया, आजू बाजू की जितनी भी गोपियां थी सबको आवाज देना चालू कर दिया, अरे मैंने कृष्ण को पकड़ लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग आ जाओ, आज कृष्ण को फटके लगाएंगे अच्छे से। अभी जब सारी गोपियां जमा होने लग गई, ये अंदर के जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे अभी परेशान हो गए, कृष्ण आज तुम्हारी वजह से आज हमको फटके लगने वाले हैं, आज तुम्हारी वजह से बहुत फटके पड़ेंगे। तो कृष्ण ने कहा अरे चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगा। तो बच्चों ने कहा कैसे संभालोगे, बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है, अभी कैसे बाहर निकलेंगे हम लोग। तो कृष्ण ने कहा बाहर जाने का एक रास्ता है, लेकिन ऊपर वाला भी मेहरबान है, ऊपर देखो छत पे कौले का छत है, हम क्या करेंगे कौला निकाल के बाहर जाएंगे। तो सारे बच्चे खुश हो जाते, सबके सब एक के ऊपर एक खड़े हो जाते, पहली दही हंडी तो एक के ऊपर एक खड़े हो जाते हैं, और एक एक करके सब लोग छत के रास्ते बाहर निकलने लगते हैं। उसमें से कृष्ण का एक सबसे प्रिय मित्र था जिसका नाम था मधुमंगल, वो बहुत ही मोटा था, हट्टा कट्टा आदमी, बहुत मोटा था। अभी उसको खींचने का समय आया, आखिरी वही बचा था क्योंकि सबसे मोटा था, तो सब मिलकर खींचने लग रहे थे उसको, और उसको खींचते 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 ऐसा हो गया कि वह ऊपर ही अटक गया, आधा शरीर बाहर आधा शरीर अंदर, निकल ही नहीं रहा, वो अटक गया अंदर पूरी तरह से। इतने में सारी गोपियां बाहर जम गई, सबने अपने हाथ में छड़ी लट्ठा लेके खड़े हो गए थे, और चलो अभी अंदर घुसते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कड़ी खोली तो देखा अंदर कोई नहीं है, सब लोग गायब। उन्होंने देखा दो पैर टंग रहे ऊपर, तो लोग बोले अच्छा भाग रहा है यहाँ पे, और सब गोपियों ने मिलकर जोरदार फटके लगाए उस मधुमंगल को, बहुत फटके खाए मधुमंगल, अरे मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, एक ब्राह्मण को मारती हो, शाप लगेगा तुमको, पाप लगेगा तुमको। इस प्रकार से सारे बच्चों को बहुत फजीती हुई, और कृष्ण भी हंस रहे थे। तो ये एक लीला थी। दूसरी एक बार लीला, वापस भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करने जा रहे थे। इस बार गोपियों ने सोचा कि हर बार कृष्ण भाग जाता है, इस बार कैसे भागेगा, इस बार कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। तो एक गोपी ने आइडिया लगाई, जैसे ही वो गोडाउन में प्रवेश करेगा दरवाजा खोलते ही क्या होगा, घंटी बजेगी। पहले के जमाने में डोरबेल नहीं होती थी, तो क्या करते थे घंटी पर ही बेल लगा देते थे ताकि जब दरवाजा हिलेगा तो घंटी बजेगी, है ना, आज भी करते ना ऐसा। तो उसी प्रकार से उन्होंने ऐसा प्लान किया और जैसे ही आवाज आएगा सब लोग मिलकर कृष्ण को वापस बंद कर देंगे और फिर सब लोग इकट्ठा होकर कृष्ण को पकड़ लेंगे। सबका प्लानिंग था और सब लोग ने प्लान करके, खासतौर पे इस बार सारी बड़ी गोपियां थी, मतलब यशोदा माता के उम्र की सारी गोपियां थी, सबने प्लानिंग किया। अभी कृष्ण भगवान अपने मित्रों के साथ वापस अंदर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन इस दिन कृष्ण और उनके मित्रों को थोड़ा सा डाउट होने लगता है। कृष्ण के मित्र कहते हैं कि हमने इतनी बार चोरी की है कि सारी गोपियां अभी सतर्क हो गई है, इसलिए अगली बार चोरी करने से पहले जरा सब कुछ चेक कर लेना, कहीं हम लोग फंस ना जाए। तो सारे जो गोप मित्र हैं सब लोग सोच रहे थे कि आज सब जगह सन्नाटा बहुत दिख रहा है, कहीं से आवाज नहीं आ रही है, कुछ तो गड़बड़ वाली बात है आज। सबने कृष्ण से कहा, कृष्ण आज गोपियों ने बहुत बड़ा प्लान किया होगा अपने पकड़ने के लिए। कृष्ण कह रहे, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तो उतने मधुमंगल कहता है, पता है कितना तुमने हमारी मदद की, पिछले बार फटके खिलाए थे तुमने हमें। तो कृष्ण कहा, आज इस बार चिंता मत करो, सब संभाल लूंगा। तो कृष्ण अपने बुद्धि से देखता है, अरे ये देखो क्या प्लानिंग की है, ये रही घंटी, दरवाजे के ऊपर एक घंटी लगाई है और इसी घंटी के वजह से वो हमें पकड़ने वाली है। तो सारे बच्चे बोलते हैं, कृष्ण आज का प्लान कैंसिल। कृष्ण कहते हैं, अरे इतनी मेहनत की है, बिना माखन खाए तो जाएंगे नहीं, और आज जिनके घर पे हम चोरी करने जा रहे हैं वो हमारी चाची लगती है। आज चाची ने जो मक्खन बनाया बहुत सुंदर मक्खन है, इतना स्वादिष्ट मक्खन तुमने कभी खाया नहीं होगा, इतना स्वादिष्ट मक्खन है, तो आज मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो भी सारे बच्चे बोलते, तो ये तो सारे बच्चे बोलते हैं, तो आज इसको ये घंटी का कैसे हम मैनेज करेंगे। तो कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं इस घंटी के भगवान को बुलाऊंगा, घंटी के देवता को बुलाऊंगा और उसको आदेश दूंगा। तो तुरंत भगवान कृष्ण घंटी के देवता को आह्वान करते हैं, घंटी के देवता आते हैं वहां पर और आकर घंटी के देवता को कहते हैं, भगवान कि अभी हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो तुम बजना मत, मेरा आदेश है कि तुम नहीं बजोगे। घंटी के देवता ने जी भगवान ऐसा कह के बोल दिया और फिर वो अंदर प्रवेश किए तो घंटी नहीं बजी और तुरंत अंदर प्रवेश कर गए। और सारे के सारे बच्चे जैसे ही प्रवेश कर गए, सबने देखा सब जगह पे माखन ही माखन रखा हुआ है, सभी बच्चों के हाथ में भगवान श्री कृष्ण ने माखन दे दिया। और उस बच्चों का भी ये था कि पहले कृष्ण को खिलाएंगे उसके बाद स्वयं खाएंगे। तो सारे बच्चों के हाथ में माखन देने के बाद कृष्ण ने जब स्वयं माखन खाया उतने में घंटी बजना चालू हो गया। तो घंटी बज, जैसे ही घंटी बजी सारी गोपियां भागते हुए आ गई, यहाँ पे बच्चे भी टेंशन में, अभी क्या होगा, घंटी क्यों बज गई। सारे बच्चे बोले, अरे कृष्ण तुमने तो आदेश दिया था वो घंटी भगवान को, तो घंटी देवता कैसे बजने लग गए। कृष्ण ही सोचने पड़ गए, अरे मेरा आदेश कैसे अस्वीकार कर दिया, वो कैसे बजने लग गए, अब तो मैं पकड़ूंगा उसको भी, घंटी के देवता को पनिशमेंट मिलेगी। और ऐसे सोच के वो, लेकिन पहले सोचे कि घंटी के देवता को बाद में पकड़ो, पहले हमारी जान कैसे बचेगी वो सोचो। तो सब लोग इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढे लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा। इतने में सारी गोपी आती है, लेकिन सारी गोपियों का केवल एक ही टारगेट था, कौन था, उन्होंने सारे बच्चों को छोड़ दिया, केवल कृष्ण को ही सारे गोपियों ने घेर लिया। अब बेचारे कृष्ण कहाँ भागेंगे, कृष्ण पकड़े गए। और कृष्ण के पकड़े जाने के बाद सारी गोपियों ने कहा, कृष्ण आज तो तुमको रंगे हाथों पकड़ा है, आज मैया यशोदा को कह के तुम्हें बहुत फटके खिलाएंगे हम, यशोदा माता स्वीकार ही नहीं करती कि तुम चोरी करते हो करके, आज दिखाएंगे कि तुमने कितनी चोरी की। कृष्ण ने कहा, वो बात की बात देखेंगे, पहले मुझे घंटी के देवता को सवाल पूछना है कि मेरे कहने के बाद भी तुम बजे क्यों। तो घंटी के देवता को पूछते कि तुम बजे क्यों, तो घंटी के देवता कहते हैं कि ये भगवान जैसा आपने मुझे आदेश दिया वैसा ही वेदों में भी आदेश है जो आप ही के उपदेश है, वेदों में जो शब्द है वो आप ही के तो आदेश है, और वेदों में ऐसा कहा है कि जैसे ही भगवान को भोग लगे घंटी बजनी चाहिए। तो आपको भोग लगा मक्खन का तो वेदों के आदेश के अनुसार मैंने बज गया, तो उसे मेरी क्या गलती है। तो कृष्ण हंसने लग गए और क्षमा कर दिया। अभी कृष्ण अभी नया आइडिया सोचने लगे कि ऐसे अभी गोपियों से कैसे बचे। अभी ये जो बड़ी गोपियां थी वो सबके सब कृष्ण को पकड़ के, किसी ने हाथ पकड़ा है, किसी ने कान पकड़ा है, किसी ने उसका धोती पकड़ा है, सब लोग कृष्ण को पकड़ के लेकर जा रहे यशोदा माता के पास। सब लोग सोच रहे थे कि आज बहुत मजा आएगा, आज देखेंगे हम कृष्ण की कैसी, मराठी में कहते ना फजीती, हिंदी में फजीहत, तो कृष्ण की कैसी फजीहत होती है देखते, आज मजा आएगा बहुत। तो जैसे ही वो यशोदा माता के घर के पास पहुंचे कृष्ण को लेकर, उतने में उन्होंने देखा कि घर के घर से नंद बाबा बाहर आ रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ। तो सारी के सारी गोपियां थी, स्वाभाविक है कि स्त्रियां जो होती है कोई पर पुरुष हो तो तुरंत अपना घूंघट लगा देती है, तो ये भी शांत चित्त होकर वहां पर रुक गई। और उन्होंने सोचा कि अगर नंद बाबा को पता चल गया कि कृष्ण यहां पर है तो कृष्ण तो छूट जाएगा, क्योंकि कृष्ण नंद बाबा के सामने तो हम कृष्ण की कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे, और हमारी जो मजा होने वाली थी या कृष्ण की जो फजीयत होने वाली थी वो भी छूट जाएंगी। तो क्या करती है वो, कृष्ण की जो चाची है, बड़ी चाची, वो अपने पल्लुओं से कृष्ण को ढक देती है जिससे वो नंद बाबा को ना दिख सके। और नंद बाबा भी देखते हैं कि अरे बहुत सारी गोपियां आई हैं तो चलो हम लोग बाहर निकल चलते हैं, तो बाहर चले गए। अभी सारे गोपियां कृष्ण को लेकर छुपे हुए रूप में, मतलब पल्लू में ढके हुए रूप में माता यशोदा के पास आती है और यशोदा को कहने लगती है कि मैया यशोदा देखो आज मैंने तुम्हारे बच्चे को पकड़ लिया, चोरी करता था, तुम कहती ना कि चोरी नहीं करता है मेरा बेटा, देखो आज मैंने पकड़ लिया। यशोदा माता कहती है अरे ऐसे कैसे, मेरा कृष्ण तो मेरे साथ है, तुमने किसको पकड़ा? तो वो कहते ऐसे कैसे, हम कृष्ण को स्वयं लेकर आए, अभी अभी पकड़ के लेकर आए। यशोदा माता ने कहा अभी अभी तो मैंने उसको खाना खिलाया, खाना खिलाकर अभी वो घर के अंदर है। तो सारी गोपियां कहती देखो हम तुमको सच कह रही है, और तुरंत वो अपना पल्लू हटाती है तो उसमें कौन होता है, कृष्ण नहीं होता, कृष्ण के जगह पे उसी चाची का लड़का होता है। तो यशोदा माता कहती है देखो अपने ही बच्चे को कृष्ण समझ के तुम मेरे पास लेकर आई हो, ये दर्शाता है कि तुम मेरे बेटे से कितना नफरत करती हो, ये इतनी नफरत अच्छी बात नहीं है। अभी कभी कभी भौजाइयों में झगड़ा होता है ना, वो चाची थी कृष्ण की, मतलब ये उसकी क्या कहते उसको, भौजाई ना क्या, जेठानी, हाँ जो भी है जेठानी थी, तो थोड़ा थोड़ा नोकझोंक हो जाती है उसमें, तो आपस में नोकझोंक होने लगी। और फाइनली जेठानी ने सोचा कि अरे कृष्ण ने कैसे चकमा दे दिया मुझे, तो फिर बिचारी उदास होकर जाने लगती है। तो रास्ते में वो अपने बेटे का हाथ पकड़ के जा रही होती है और सोचती है कि अरे कृष्ण ने कैसे चकमा दे दिया, ऐसे कैसे हो कृष्ण छूट गया और मेरा बेटा मेरे हाथ में आ गया, ऐसे सोच ही रही थी वो कि उतने में पीछे से कृष्ण आवाज देते हैं। और जब मुड़ के देखती है तो उसके हाथ, जिसका उसने हाथ पकड़ा होता है उसका बेटा नहीं कृष्ण ही होता है, कृष्ण ने अपना रूप बदल लिया था अभी। और कहता है मैया प्रभावती इस बार तो आपको छोड़ दिया, इस बार तो तुम्हारे बेटे का हाथ पकड़ के तुम खड़ी थी, अगली बार मुझे फिर से पकड़ा तो तुम्हारे पति का हाथ तुम्हारे हाथ में होगा। तो बिचारी वो कलावती नहीं प्रभावती देवी बहुत बहुत ही क्या होते शर्मीली हो जाती है और वहां से चली जाती है। तो इस प्रकार से कृष्ण हर प्रकार के अतरंगिक नाटक करते रहते थे। एक बार सारी गोपियां बहुत परेशान हो गए, कृष्ण बहुत अभी चोरी करने की सीमा खत्म हो गई थी, बहुत चोरी कर रहे थे भगवान। तो सारी गोपियों ने इकट्ठे होकर यशोदा माता के पास आते और यशोदा माता को कहते कि माता यशोदा हम कृष्ण से बहुत परेशान हो चुके हैं, हमेशा चोरी करते रहता है। तो यशोदा माता ने सोचा कैसे चोरी करता है, मेरा बेटा तो चोर हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास तो भी कम गाय है, हमारे पास तो मेरे नंद बाबा के पास 900,000 गाय है, हमारे पास गायों की कमी कहां पर है, और हमारे गोडाउन में हर जगह पे मक्खन घी दही सब भरा पड़ा रहता है, मेरा कृष्ण हमारे घर का खाना छोड़ के तुम्हारे घर पे क्यों आएंगे? तो सारी गोपियां कहती है, ये दर्शाता है कि तुम्हारा बेटा कैसा कितना बदमाश है, घर पे होने के बाद भी वो बाहर जाके खाते रहता है। तो ये सोच के सारी गोपियां यशोदा माता को कंप्लेंट करने लगती है। और कंटिन्यू करें कि अभी दर्शन खुलेगा, अगर आप बैठे रहेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो हम यहीं पे रुकते हैं। जय श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी की जय। तो बोलू या रुकू? कंटिन्यू, ठीक है। तो यशोदा माता को फिर गोपियों ने कहा कि आपका बेटा अलग अलग प्रकार का ट्रिक करता है चोरी करने के लिए। एक बार हम लोग गोडाउन से दूर हो जाए, इस वजह से वो क्या करता है, सारे बछड़ों को छोड़ देता है, और जब हम गायों का दूध दुहाने जाती है तब तक गायों का सारा दूध खत्म हो जाता है, हमें हमारा गोडाउन छोड़कर इन बछड़ों को संभालने के लिए जाना पड़ता है, उतने में आके गोडाउन से सारा चोरी कर लेता है। दूसरी गोपी कहती, इतना ही नहीं, कभी कभी उसको जब घर में मक्खन नहीं मिलता तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पालने में सोते रहते हैं उनको चिमटी निकालता है और उनको रुलाना चालू कर देता है। तो हम लोग हमारा सारा काम धाम छोड़कर हमारे बच्चों को संभालना पड़ता है, ऐसा शरारती है तुम्हारा बेटा। तो यशोदा माता कहती कि ऐसा करो फिर, तुम्हारे जो मटकिया है मक्खन वाली मटकिया, उसको छुपा के रखो। दूसरी गोपी कहती है कि हमने वही किया, अंधेरे कमरे में छुपा के रखा था, लेकिन कृष्ण के शरीर पे जो आभूषण है वो आभूषण इतने चमकीले हैं, रोशनीदार है कि अंधेरा कमरा भी रोशन हो जाता है और कृष्ण उसे ढूंढ लेता है। तो यशोदा माता कहती है, ठीक है, अगली बार से मैं कृष्ण के ऊपर आभूषण ही नहीं डालूंगी। तो सारी गोपियां कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, वास्तविक तौर पर यह आभूषण नहीं बल्कि कृष्ण के शरीर का ही तेज इतना है कि बिना आभूषण के भी वो घर अंधेरा उजाला हो जाता है। तो इस प्रकार से वो कंप्लेंट करने लगती है। तो ये सुन के माता यशोदा सोचती है कि बहुत कंप्लेंट आने लग गई, अगली बार कुछ करना पड़ेगा। फिर यशोदा माता आगे की लीला करती है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, एक घंटे में हमने इतना ही कह पाया, नहीं तो मेरा पूरा प्लान था आज दामोदर लीला भी कहने का, लेकिन आज नहीं हो पाया। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री दामोदर भगवान की, माखन चोर कन्हैया की जय, बोलने वालों की
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान श्रीवल्लभ प्रभु। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी तरह हमें कृष्ण कथा बताई, तो प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी सभी जन श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी की महाआरती में डांसिंग कीर्तन करते हुए भाग ले सकते हैं। उसके पश्चात हमारी स्वागत टीम यहाँ पे श्रीवल्लभ प्रभु, सर्वात्मा हरि प्रभु और उनकी टीम रहेगी। तो जो भी भक्त पहली बार आए हैं उनसे विनती है कि वे उनसे मिले और अपना उपहार प्राप्त करें और उसके पश्चात ही लंच के लिए प्रस्थान करें। हरे कृष्णा।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
सब बोलिए कृपया
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
बोलो
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
सब बोलिए
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे